लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि, आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां है आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान। होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि, मन की गति पर हुआ नियंत्रण, संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म स्वयं का करते निज संशोधन। चिंतन लगा चमकने चित की, चंचलता कुम्हलाई। निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई। वाह तपस्या तेरा अनुभव, रस भी बड़ा निराला। आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि,
ओम शांति। अभी के सत्र में हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सतीश भाई जी। एक हाथ हिलाकर भाई जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप दिल्ली से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। गृहस्थ जीवन में रहते कमल फूल समान जीवन कैसे जिया जाए, उसका एक आदर्श उदाहरण है। पिछले 38 वर्षों से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और 28 वर्षों से मधुबन धरनी में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। आप ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन के डायरेक्टर हैं। आप केयर प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें राजयोगा मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंज करने से हार्ट ब्लॉकेज से निजात पाया जा सकता है। आप केयर रिसर्च प्रोजेक्ट के आप डायरेक्टर हैं। इस केयर प्रोग्राम के द्वारा हजारों की संख्या में दिल के मरीजों को शफा दिलाई है, जिस कारण से आप एक विशेष नाम से ब्राह्मण परिवार में जाने जाते हैं। वो नाम है दिल वाले डॉक्टर सतीश भाई जी। इतना ही नहीं, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2006 में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी के योगदान के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा ताई पाटिल जी द्वारा आपको सम्मानित किया गया। और फिर 2011 में तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी आपको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन कार्डियोलॉजी योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो ना सिर्फ दिलाराम के दिल तक नशीन है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के भी दिल में विराजित है। तो आज का विषय है ज्वालामुखी योग तपस्या। इस विषय पर भाई जी प्रकाश डालेंगे। तो सुनते हैं आदरणीय सतीश भाई जी।
ओम शांति। ज्वालामुखी योग तपस्या, हम शुरुआत इसी से करते हैं। एक ज्वालामुखी योग तपस्या में थोड़ी देर बैठ जाते हैं हम एक मिनट के लिए। चलिए, इस देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को डिटैच कर लीजिए और अशरीरी आत्मा बन परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाइए। ओम शांति। क्या अभी हम उस समय पर आ पहुंचे हैं जब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। ना खाली हम आत्माओं को वापस जाना है, पर बाबा ने हमें और भी जिम्मेवारी क्या दी है, साथ में सबको भी ले जाना है। कोई को छोड़ के जाना है, स्वयं जाना है, उनको भी लेके जाना है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दिला के ले जाना है, राइट। खाली स्वयं जाने की बात होती बहुत सहज होता कि तू ये नहीं, बाबा ने कहा बच्चे मैं आया हूं तुम सबको लेने, सबको सबको शरीरों से मुक्त करके मैं लेके जाऊंगा। और हम बाबा के वजह साथी बन के जाएंगे, बराती बन के जाएंगे, बराती साथी, साथी बन के जाएंगे ना, तो साथी बन के जाएंगे साथ साथ। अभी तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और राजधानी में भी बाद में आएंगे, साथ में आएंगे, राइट। तो अभी हमको वापस साथ में आना है, पर प्रॉब्लम क्या है, बीच में जाने में क्या प्रॉब्लम है, साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है। वैसे जाना तो प्रॉब्लम नहीं, बरात में जाना तो कोई हर्जा नहीं, बरात में जाने की कोई समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। साथी बन के जाने के लिए समस्या है, क्या है, बीच में 63 जन्मों के पाप करे हुए। बाबा तो एवर पावन है ना, एवर सातों एनर्जी का पावर हाउस है, सागर है, कि तो हम आत्माओं ने अपनी सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं क्या किया, पसम कर ली, खत्म कर ली, किसमें, पाप कर्म करने में। 63 जन्मों में जो पाप कर्म किए, विकारों के वशों के जो कर्म किए, उसमें हमारी सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा खत्म हो गई थी, राइट। हम तमो प्रधान बन गए और तमो प्रधान बनने से अब हमारे पंख खत्म हो गए, उड़ने के पंख खत्म हो गए। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको वापस घर जाना है, तो हमको अपने 63 जन्मों के पाप कर्म, पुराने स्वभाव संस्कार जो 63 जन्मों से विकारों के वश हमने कर्म किए, उसके वश में रह करके जो हमारे आसुरी स्वभाव संस्कार बन गए, उनको भस्म करना है। क्योंकि हम देह के साथ तो जा नहीं सकते, तो देह छोड़नी पड़ेगी, देह के संबंध संपर्क भी छोड़ने पड़ेंगे, देह के पदार्थ भी छोड़ने पड़ेंगे, और देह अभिमान से पैदा होने वाले पांच विकार और इनसे पैदा होने वाले पांच विकारों के प्रयोग से जो आत्मा की सातों एनर्जी भस्म होती है उससे पैदा होने वाले 10 संस्कार 10 मुख्य संस्कार हैं जो हमें वहां जाने से रोकते हैं, राइट। बाप के समान बनने से रोकते हैं, साथी बनने से रोकते हैं, बाबा के पास रहने से रोकते हैं ना, क्या एक है ना, पास रहना है, पास करना है, पास रहना है, और फिर पास भी दोनों है नी? सात एनर्जी है बाबा, आत्मा के साथ एनर्जी नहीं बता आपको, जहां से तो सत्व प्रधान शब्द है ना, सत्व प्रधान, सत्व मतलब सात, प्रधान माना भरपूर, सात से भरपूर, कौन कौन सात एनर्जी है? पहले है ज्ञान, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, उसे सार रूप में ABCD कहते हैं, आत्मा, बाबा, कनेक्शन अर्थात संबंध, और डी फॉर ड्रामा। तो ये सत्य की समझ हम आत्मा को सभी को मिली है, ये जो हम साधन कोर्स करते ना उसमें यही बातें बताई जाती है, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा परमात्मा का संबंध, और ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा में कर्मा फिलोसॉफी क्या है, राइट। और ये चार सत्य हैं, आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, परमात्मा परम सत्य है, और आत्मा परमात्मा का संबंध भी सत्य है, और कर्म भी सत्य है। जो कर्म हमने कर दिया उसका विनाश नहीं हो सकता, पाप कर्म भस्म, पाप भस्म होता है पर कर्म भस्म नहीं होता है ना, हिसाब खत्म होता है किंतु किताब खत्म नहीं होता है। आपको पता है किताब और हिसाब क्या होता है? पता नहीं, पता है? कर्म और पाप कर्म में फर्क पता है ना? जैसे मैं आपको ईश्वरी क्लास में एग्जांपल देता हूं कि जैसे किसी से आपने 10 रुपये उधार लिया 100 साल पहले, 100 साल के बाद किसी व्यक्ति किसी दोस्त से लिया, उसे वापस नहीं कर पाए, 100 साल के बाद वो व्यक्ति क्या करेगा आपके साथ उस जन्म अगले जन्म में, या तो आपका साथी बन, जीवन साथी बन के आएगा, या बच्चा बन के आएगा, या बच्ची बन के, या बिजनेस पार्टनर बन के आएगा, और उसको आपको 10 रुपये वापस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, और उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। 100 साल का ब्याज कितना होता है पता है आपको? कितना? हाँ, हमने हिसाब लगाया 4,18,35,040 रुपये, इतना हिसाब होता है ना? अब देखो ये हिसाब है, तो ये चार चार 10 रुपये क्या है? हिसाब है, और ये इतना इतना 4,18,00,000 क्या है? किताब है। तो इतना आपको किताब देना पड़ता है, तो इतना मतलब ये इंटरेस्ट देना पड़ता है। हमारा हिसाब है तो 100 साल की मैंने बात की, पर हमारा हिसाब किताब कितने साल का है? 2500 साल का, तो हमारा तो बहुत भारी है। आप इसलिए अपने जीवन में देखते हो कोई व्यक्ति आपको तंग किए जा रहा है, किए जा रहा है, सुबह दोपहर शाम मानता ही नहीं है, मतलब मानता या मानती नहीं है, वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, मतलब उसको समझ भी नहीं आता, रियलाइज भी नहीं होता कि हम इसको तंग कर रहे हैं। कोई इंसल्ट किसे 2 बार इंसल्ट की 100 साल पहले, इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी? कितनी बार? 20,000 बार, कम से कम 20,000 बार तो होगी। अगर आपने विधिपूर्वक योग किया तो 20,000 भस्म हो जाता है, 2 बार तो करे मिलेगी। इसी तरह से 10 रुपया देना पड़ता है, कितना? 4 करोड़ माफ हो जाता है, 4,18,00,000 माफ हो जाता है। अगर विधि पूर्वक करो तो आपकी योग की विधि ठीक है, याद की विधि ठीक है, यथार्थ विधि है ना? जैसे हम कहते हैं ज्वालामुखी हमारा योग होना चाहिए, ज्वालामुखी योग तपस्या होनी चाहिए, अगर वो विधि हमारी एक्यूरेट है, उसमें कुछ भी मनमत परमत नहीं मिली हुई है, तो वो पूरा कपड़ा बस समझ आएगा। इसलिए कहते हैं कर्म भोग सूली भी क्या बन जाता है? कांटा, और कांटा भी फूल बन जाता है, मतलब कांटा जो आपने उस कर्म भोग को काटा वो भी आपके लिए एक अनुभव बन जाता है, आपको तकलीफ नहीं होती। दादियों को हमने देखा, हमारी दादियों को भी तकलीफ तो आई, बाबा को भी तकलीफ तो आई, मम्मा को भी आई, पर वो ऐसे सैंपल बन गए सहन करके समाने के कि आज हमारे लिए आदर्श है, राइट। तो ऐसा कर्म भोग को हंसते हंसते सहन करके समा लेना और पता भी न लगे सामने वाले को इसको तकलीफ है, ऐसी स्थिति। अभी दादी रतन मोहिनी ऐसी हैं, आप देखो तो बुखार अभी इनको पीछे निमोनिया हो गया था, अभी 5-6 दिन पहले की बात, अभी भी इंजेक्शन चल रहे हैं। पर दादी के पास जाओ, दादी ऐसी लगता ही नहीं आपको निमोनिया हुआ, उसको बुखार 102 है पता ही नहीं लगता है, मुस्कुराती रहती है। मतलब आप देखो, आपको 102 बुखार हो तो आपकी क्या हालत होगी, है ना, निमोनिया हो जाता आपको क्या हालत होगी, सांस भी थोड़ा खिंचके आ रहा है, कोई बात नहीं फिर भी मुस्कुरा रही है, दादी कैसे हो, डॉक्टर हम तो टोटल ठीक है, मुस्कुराते या तो बोलती नहीं तो बोलेगी, इतना ही बोलेगी मैं ठीक हूं, टोटल ठीक हूं, थोड़ा ठीक नहीं टोटल ठीक। तो मतलब वो उसकी अश्लील स्थिति की निशानी ना, कि उसने अपने पाप कर्म भस्म कर लिए, कर्मों का हिसाब किताब है ही नहीं, कर ऑलमोस्ट कर्मातीत स्थिति में है, विधेय स्थिति में, देह में रहते भी विधेयी है, राइट। वो मुस्कुरा रही है, उसको अत्यंत सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति है। ऐसे बड़ी दादी को देखा अपने, शांतामणि दादी को देखा, जानकी दादी भी कितनी तकलीफ होती तो भी 7:30 बजे क्लास में आ जाती थी, कितनी भी तकलीफ होगी थोड़ी देर पहले कहेंगे देखो तकलीफ उसकी बहुत, सांस फूल रहा, तकलीफ हो रही है, फिर क्लास में आ जाएगी। तो कैसे, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, दो एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि कितना हमारी विधि एक्यूरेट होनी कितनी जरूरी है। पहली जो एग्जाम्पल है सूरज की है, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो लाइट है ना वो क्या है, सूरज। सारे पृथ्वी को प्रकाश, पृथ्वी को पूरे अंतरिक्ष को प्रकाश कहां से पहुंच रहा है, चांद को भी प्रकाश कहां से पहुंचता है, सूरज से पहुंचता है ना। तो चांद मतलब सूरज जो है इस धरती पर सबसे बड़ी लाइट है, ज्वाला का, सूरज क्या है, जलती हुई गैसों का मिश्रण है, एक जलता हुआ पिंड है ना, और उससे सारे धरती पर हमारे गर्मी 40 डिग्री भी 50 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाता है ना। तो इतना मतलब गर्मी भी इस धरती पर, पूरे धरती पर और भी ग्रहों पर, ध्रुव ग्रह पर तो बहुत तेज टेम्परेचर होता है ना, हजारों में टेम्परेचर होता है, सॉरी ध्रुव नहीं, बुध ग्रह पर जो सबसे नजदीक है। तो वो सूरज क्या है बेसिकली, सूरज जो है अंदर आयन्स है, आयन्स होते समझते हैं, एक आयनोस्फीयर है एक फोटोस्फीयर है, बीच में जो दिखाई देता है सफेद सफेद दिखाई देता है ना, और बाहर एक और दिखाई देता है, तो आयनोस्फीयर है, उसमें क्या है 75% हाइड्रोजन है और लगभग 22% हीलियम गैस है। हाइड्रोजन गैस की जो पावर होती है वो एक होती है, एक ही एटम होता है उसमें, और हीलियम में दो एटम होते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता रहता है, हीलियम जो होता है ना, हीलियम जो गैस होती है उसमें दो हाइड्रोजन के आयन होते हैं और वो ब्रेक होते हैं और दो जुड़ते हैं तो हीलियम बन जाती है, दो हाइड्रोजन जुड़े तो हीलियम बन गई, और अगर हीलियम ब्रेक हो जाए तो क्या होता है, हाइड्रोजन बन गई। तो हाइड्रोजन हीलियम जो ब्रेक पे उसको बोलते हैं फिशन, फिशन माने टूटना, उससे एनर्जी पैदा होती है। दो हाइड्रोजन का आयन जब अलग अलग होते हैं ना, एक एक दो में टूटता है, दो एक में अलग अलग हो गए तो उससे बहुत एनर्जी पैदा होती है, और वो एनर्जी ही ज्वाला रूप होती है, राइट। और जब दो हाइड्रोजन के आयन मिलते हैं तो क्या होता है, उससे भी बहुत से तो बहुत ज्यादा हजार गुना एनर्जी पैदा होती है। इसी आधार पर एटम बम और हाइड्रोजन बम बने। तो दो है, जब मेटल होती ना, यूरेनियम जैसे होता है यूरेनियम, उसमें से एटम टूटते रहते हैं, उसके न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकलते रहते हैं तो एनर्जी पैदा, उसको कहते हैं एटम बम। कितना विनाश होता है उससे, कितनी आग निकलती है उसके अंदर से, कितने लोग मर जाते हैं, सब कुछ मर जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, होता है नहीं होता। और एक हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम में क्या फ्यूजन होता है, उसमें क्या होता है, दो एटम्स का प्रोटॉन्स का फ्यूजन होता है, मतलब जुड़ते हैं तो उससे तो 10,000 गुना एनर्जी निकलती है, वो हाइड्रोजन बम होता है। तो हमारा योग भी ऐसे ही है, जो आत्मा में जो अभी देहभान आ गया है, देह अभिमान आ गया है, देह अभिमान के संबंध संपर्क आत्मा में वो भर गया है, हमारी आत्मा का दिल है ना, जो अभी था ना, दिल कहां है, दिल कहाँ होता है? शरीर का दिल तो ये है, आत्मा का दिल कहाँ है? मन बुद्धि संस्कार नहीं है, आत्मा का दिल यहां है ना? जो सेंट्रल बुद्धि का भी सेंट्रल एस्पेक्ट है, चेतना कहते हैं उसे, हार्ट ऑफ द सोल कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, हिंदी में चेतना कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। तो दिल जैसे वो देखे ना शूटिंग बोर्ड होता है ना, शूटिंग बोर्ड देखा, शूटिंग रेंज में शूटिंग बोर्ड होता है जिसमें शूटिंग करते हैं ना, तो बीच में एक बिंदु होता है, जो पहला पहला गोला होता है ना वो दिल है, उसे बोलते हैं हार्ट, हार्ट ऑफ द, उसमें अगर शूट करें तो 10 में से 10 नंबर आते हैं। तो वो हमारी वो कॉन्शियसनेस है। तो ये जो है, जो दिल है ना, ये इस दिल में क्या है? अब मनुष्यों के दिल में क्या आ जाता है? मनुष्यों के दिल में हद आ जाती है, हद माना जो आज है कल नहीं रहेगी, सत्य नहीं रहता, असत्य रहता है। असत्य, सत्य की परिभाषा क्या है? जो सदा रहता है, शाश्वत है, जन्म मरण से परे है, एटर्नल है, और सत्य कभी भी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील, अनचेंजेबल है, राइट? और मनुष्य के दिल में क्या रहता है? असत्य या हद, जैसे देहभान हद है ना, देहाभिमान हद है, क्या बेहद है, हद है ना, आज है कल नहीं भी रहता है, और देहाभिमान के संबंध संपर्क, देहाभिमान के पदार्थ आज है कल नहीं भी हो सकते, और देहाभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बचपन में नहीं होते, बुढ़ापे में भी नहीं होते हैं, किंतु 15 साल से लेके 60 साल की उम्र तक लगभग रहते हैं, 60-65 तक रहते हैं, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, राइट? तो ऐसे 5 विकार, 5 विकार से पैदा होने वाले, क्योंकि 5 विकार से आत्माओं के 7 एनर्जी कम हो जाते हैं, जलती जाती है, तो हमारे अंदर 10 संस्कार पैदा हो जाते हैं, जिससे मनुष्य तंग होते हैं। कौन कौन से 10 संस्कार है? पहला अलस्य, ब्राह्मणों का नंबर 1 दुश्मन कौन सा है? अलस्य। दूसरा अलबेलापन। तीसरा दोष दर्शन, जिससे हमारा जीवन कलुषित बनता है, क्लेश वाला जीवन बनता है, है ना? आदत पड़ जाती है सबके अवगुण देखने की। सत्युग में हम क्या करते हैं? जब आत्मनी होते हैं सबके गुण दिखाई देते हैं, गुणों में व्यवहार करते हैं, और अभी क्या होता है कलयुग में? कलयुग क्यों बना? इसी कारण से, क्योंकि सबके हम दोष दिखाई देते हैं। हमें मोती दिखाई नहीं देते, 95 मोती दिखाई नहीं देते, बीच में 5 कीड़े हैं वो दिखाई देते हैं। और हंस सत्युग में क्या होता है? हमको चारों तरफ मोती मोती दिखाई देते हैं, गुण ही गुण दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई देते नहीं किसी के भी, होते भी नहीं, दिखाई भी नहीं देते। फिर आत्मन स्थिति क्या होती है? उसमें रहम दिल होते हैं, दूसरे गलत देख के करते देख के रहम आता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है? बदलने की भावना होती है, किसने कोई हमारे साथ गलत करे, बदलने की भावना। आत्मन स्थिति निश्चय और विश्वास पैदा करती है, किंतु देहाभिमान वाली स्थिति क्या पैदा करती है? संशय पैदा करती है और अनुमान पैदा करती है। आत्मन स्थिति हमको क्या बनाती है? बेफिक्र बनाती है, निश्चिंत बनाती है और निर्भय बनाती है, क्योंकि देहाभिमान वाली स्थिति हमको क्या करती है? चिंता पैदा करती है और डर पैदा करती है। आत्मन स्थिति हमको क्या बनाती है? धैर्यता, धीरज रखना सिखाती है और हमको विश्व कल्याणकारी बनाती है। तो देह विमानी स्थिति हमको क्या करती है? हमको हमारे तो जल्दीबाजी पैदा करती है, टाइम की जल्दी, काम की जल्दी, हर समय प्रेशर में जीते हैं, हर समय जल्दीबाजी, हर समय प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर। आज हम जीने सारी बीमारियों के कारण ही प्रेशर बेस्ड लाइफ स्टाइल, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे कैंसर हो, हमेशा प्रेशर में जी रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक प्रेशर ही प्रेशर है, सपनों में भी प्रेशर है, सपने भी शांति से नहीं देखते हैं, देखते हैं उसमें भी प्रेशर महसूस करते हैं, नहीं? हर चीज में प्रेशर ही महसूस करते हैं, और बदला और ईर्ष्या, कंपटीशन, कंपैरिजन। तो 10 हमारे संस्कार पड़ गए, ये आदत बन गई मनुष्य की, जिसके कारण आज सभी जगह परेशानियां हैं, शांति चैन नहीं है कहीं भी, एकदम आदमी बेचैन है। इन 10 आदतों के कारण आदमी बेचैन है, अशांत है, चंचल है, बेचैन है, ना? तो ये जो है हमको, तो हम ये बात समझे, तो हमें जो है फिशन माना, अब आत्मा में, आत्मा के दिल में ये बातें भर गई है। क्या? देवान देवी मान, संबंध संपर्क, पदार्थ और पांच भाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और इनके 10 बच्चे। अब इनको एक एक को निकालेंगे ना तो एनर्जी पैदा होगी। क्या पैदा होगी? ज्वाला पैदा होगी, एटम बम। क्या पैदा होगा? एटॉमिक बम बन जाएगा। मतलब इतनी ज्वाला पैदा होगी, आत्मा एकदम फ्री हो जाएगी ना। आत्मा भी क्या बंधन में है इनके, तो ज्वाला पैदा होगी। तो ये चलते फिरते उठते बैठते पहली पहली जो दिव्य, जैसे हम शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा मां के रूप में हमको क्या करता है, दिव्य ब्राह्मण जन्म देते, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, ये दो गिफ्ट हमारी बर्थडे गिफ्ट है। राइट, बाबा ने बताया हुआ है, उस पर एक मुरली भी चली थी शायद आपको याद होगा, रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि, दो हमारे ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है ना। संगम युग ब्राह्मण जन्म मिलते ही हमको एक गिफ्ट मिल जाती है। तो जितना हम दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट को, हम इसको गिफ्ट को यूज करते हैं, दिव्य बुद्धि नहीं, दिव्य दृष्टि को, जितना हम दिव्य दृष्टि को यूज करते जाते हैं उतना दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती जाती है। राइट, तो दिव्य दृष्टि हमको क्या मिलती है? अभी हम जब मनुष्य किस रूप में देखते हैं अपने आप को, दूसरों को देहभान से देखते, देहाभिमान से देखते, मेल है फीमेल है, मैं ऐसा हूं, ये ऐसा है। राइट, देहाभिमान के संबंध संपर्क के रूप में देखते हैं। देहाभिमान के पदार्थ, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना चीजें हैं, मेरे पास इतनी चीजें, पदार्थों गिनते रहते हैं, और स्वभाव संस्कार इसी रूप में देखते हैं। राइट, किंतु अब बाबा ने जो दिव्य दृष्टि दी है तो अब हम किस रूप में देखते हैं अपने आप को या महसूस करते हैं? अब मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा के संतान। तो चलते फिरते उठते बैठते इस दिव्य दृष्टि से अपने आप को देख रहे हैं, और सामने वाला, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, दोस्त हो, सेंटर पर रहने वाले दूसरे भाई बहन हो, कोई भी दुनिया में हो, ऑफिस में हो, उन सबको हम भी किस रूप में देखते हैं? वो भी स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, उस परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा शिव बाबा के संतान। तो अब दिव्य दृष्टि हमारी ये इमर्ज करते हैं, जितना जितना इस दिव्य दृष्टि को इमर्ज करते हैं, इतना जितना दिव्य दृष्टि को यूज करते जाते हैं, क्या होता है, हमें अपना क्या नजर आने लगता है, ABCD, परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे सरल संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं, और सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने और मैंने अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया। उसका डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा की डायरेक्शन में बजाया। उसमें कुछ गलत हो सकता है? गलत तो है ही नहीं। किसी ने मुझे धोखा दिया, बार बार धोखा दे रहा है, गलत किया है क्या उसने? हमने धोखा दिया है इसलिए वो मुझे बार बार धोखा दे रहा है। किसी का मैंने नुकसान किया है, उसने मुझे बार बार नुकसान कर रहा है। राइट, किसी को इंसल्ट किया है इसलिए मेरी बार बार इंसल्ट कर रहा है। किसी के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं तो भी मेरी बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको किया हुआ है। तो कुछ भी गलत हुआ है अभी तक? गलत हुआ है तो उसको फुल स्टॉप लगाओ। अभी तक जो बीत गया उसको सेकंड में फुल स्टॉप लगा के और अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ। जो बाबा ने दिव्य दृष्टि दी उसमें टिक करके उस परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड हो जाओ। तो ये ड्रामा, अगर हम ऐसे कंबाइंड है कि कर्म योगी बन के उस असोचता बाप शिव बाबा को ने असोचता है, कुछ भी सोचता नहीं है, क्योंकि उसको पता है जैसा कर्म वैसा फल। चाहे आतंकवादी हो, चाहे बाबा का बच्चा हो, बीके में भी कैसा हो, सपूत हो चाहे कपूत हो, लगा हो या सगा हो, मातेला हो चाहे सोतेला हो, बाबा कभी परवाह करते हैं इस बात की नहीं? जैसा कर्म वैसा फल। तो बाबा कुछ भी सोचते नहीं है और हम क्या करते हैं, सारा दिन सोचते ही रहते हैं ना। तो ये हमें देखना कि हमें भी बाप समान असोचता बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म करना। हमारा सारी प्रॉब्लम कहां होती है पैदा? हम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाते? कौन सा विघ्न आता है? पास्ट, जो पास्ट की जो अभी तक हमारे साथ बीता है ना, उसके संकल्प वर्तमान में आ जाते हैं। 90% संकल्प पास्ट से आते हैं, पास्ट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स। बचपन से जो हमें बचपन से हमारी हमारी मन को और हमारी भावना को चोट पहुंचती है, वो उसी रंग से उसी चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं। अभी उसको फुल स्टॉप लगा देना, वो चश्मा उतार देना, और वर्तमान में जो बाबा ने दिव्य दृष्टि दी है वो उस नया चश्मा लगा के देखना दुनिया को, अपने को भी उनको भी। पुराना चश्मा उतार के क्या करना है, जब बाबा ने चश्मा दिया ना उसको उससे देखना। अगर हमें ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होकर जागृत करनी है, तरसे जन्मों के पाप कर्म भस्म करने, क्योंकि हम यही मैट्रिक्स है, यही जंजाल है। जंजाल समझते हैं, हमें पता है इसमें फंसने से कुछ फायदा नहीं है। इनको फील करने से हम हजार बार फील करें, हजार बार बोलें, क्या फायदा है। उसको फुल स्टॉप लगाना है, अभी समझ को यूज करना है। तो फुल स्टॉप लगाने से ही योग लगना शुरू होगा। अब तब अपने सत्य स्वरूप में टिक पाएंगे, और तब उस परम सत्य से, बिना सत्य में टिके इसमें टिके, उस परम सत्य से कंबाइन हो नहीं सकते। सत्य परम सत्य का आपको हिसाब समझ में आया नहीं आया? सत्य परम सत्य में क्या फर्क है? मैंने बाबा के लिए कहा परम सत्य, आत्मा के लिए कहा सत्य, क्या फर्क है? सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है। इसका क्या मतलब? शिव ही सदा सोल को अंश, सदा ही आत्मा है, सदा ही आत्मा मानिए कि तू आत्माएं आधा कल्प सत्य है, मतलब आधा कल्प आत्मा मानिए सत्य उत्तरता में, और द्वापर कलयुग में क्या बन जाती है तो आत्मा किंतु क्या बन जाती है, देह अभिमानी बन जाती है, तो क्या बन जाती है, असत्य बन जाती है। और शिव ही सदा सुंदर है, माना शिव सदा पावन है, और हम आत्माएं आधा कल्प सत्य उत्तरता में सुंदर है, और आधा कल्प द्वापर कलयुग में क्या बन जाते हैं, श्याम बन जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब यह है कि बाबा सदा ही है और हम आत्माएं है तो आत्मा ही, किंतु हम उसको कब आत्मा कबर दाखिल हो जाती, देह अभिमान में उसको भूल जाता है मैं आत्मा। तो बाबा हमको देह अभिमान रूपी कबर से जगाते हैं। तो हमको ये बड़ा क्लैरिटी आनी चाहिए, अगर सचमुच हमको ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा अग्नि जागृत करनी, कि हमें चलते फिरते उठते बैठते पास्ट का एक विचार भी मेरे अंदर नहीं आए, उसको एक सेकंड पे फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिक के उस परम सत्य बाप से कंबाइंड होके, ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड होके हर कर्म करना है चलते फिरते उठते बैठते। तो ये फिशन है, मतलब पास्ट को फुल स्टॉप लगाना क्या है, हमने अपने आप को क्या किया, देहभान देहभिमान पुराने से अपने आप को डिटैच कर लिया, तो क्या पैदा हुआ, इससे बहुत ज्वाला पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। बाप से हम जुड़ सकते हैं, नहीं तो हम बाप से जुड़ नहीं सकते। प्रॉब्लम यही आती है, मां बच्चे मां शिव बाबा को याद करती है, बाबा मेरे बच्चे का ना एग्जाम है उसको पास करा देना। अब बताओ उसका करंट पहुंचेगी बच्चे को, उसको पास कर देना, मैं तेरा भोग लगवाऊंगी शुक्रवार को, 5,000 का भोग लगाना ही भोग लगाएंगे सेंटर पे, ठीक है। योग लगा ज्यादातर हमारा ऐसे ही होता है, माताएं होती ना बहुत प्यार से, बच्चे का बर्थडे आ रहा है, पापा मेरे बच्चा है ना इसका ना इसका नौकरी लग जाए ना बस तेरा मैं अभी 11,000 का भूल गया, है ना, ऐसे करते नहीं करते नहीं, भाई कम करते हैं, माताएं बहुत भावना रखती हैं, नहीं करते हैं ना। तो बताओ उसका कुछ मतलब है क्या, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये नहीं, मां का बाप है क्या वो शिव बाबा, मां का बाप है क्या, क्या आत्मा का बाप है, आत्मा का बाप है क्या मां का बाप है, तो ये हमें ध्यान देना है। तो जब तक फिशन नहीं होगा, फिशन नहीं होगा, फिशन माना जब तक देहभान देहभिमान नहीं टूटा है, जब तक पास्ट को फुल स्टॉप नहीं लगाया है, अभी तक जो बीता उस मां को भी फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, पत्नी को भी फुल स्टॉप लगाना है, पति को भी फुल स्टॉप, और पिता को भी फुल स्टॉप, डॉक्टर को भी फुल स्टॉप, बिजनेसमैन को भी फुल स्टॉप, है ना, और किसको भी, बैरिस्टर को भी फुल स्टॉप, है ना, जो भी रोल प्ले करे उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, और फुल स्टॉप लगा के तब आत्मा अपने को सत्य स्वरूप में टिक के उस परम सत्य से कंबाइंड करंट बैटरी आएगी। तो फिशन होगा, तो फ्यूजन होगा, तो हाइड्रोजन बम बन जाएगा, तब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योगनी जागृत होगी। बाबा ने एक मुद्दे में कहा था, बेसिकली क्या है, चलो यहां एक एग्जाम्पल समझ में आया ना, तो इससे कितनी ज्वाला पैदा होती, कितनी अग्नि पैदा होती, सारे धरती को सकाश मिलता है, सूर्य से मिलता नहीं मिलता, तो उसका उसका साधन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, टूटना और जुड़ना, है ना। तो यहां से टूटे तो वहां से जुड़े, यहां से टूटे नहीं तो टूटने से भी यहां से फंसे हुए हैं, एनर्जी पैदा नहीं हुई, है ना, और वहां से जुड़े भी नहीं, वहां से भी एनर्जी पैदा नहीं, खाली के खाली, यहां से भी खाली वहां से भी खाली, राइट। तो पहला तो एग्जाम्पल यह, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, एक कागज पड़ा हुआ धूप में, बाहर पड़ा धूप में, धूप सूरज तेज चमक रहा है, कागज जलता नहीं है, जलता है, और अगर हम लेंस ले लें, लेंस लेके और कागज पे फोकस करें तो कितनी देर में जलता है, एक मिनट में, एक मिनट में सही ढंग से एकाग्र करो तो धुआं निकलने लगता है ना, कि तो लेंस अगर गंदा हो तो, लेंस अगर गंदा हो तो नहीं जलेगा, और जो लेंस भी जो साफ कर लिया कि तो हाथ ऐसे ऐसे करता रहे तो, हाथ हिलता रहे तो नहीं जलेगा, है ना, और सही ढंग से फोकस नहीं करे तो भी नहीं जलेगा, तीनों तीनों कंडीशन है ना। बुद्धि लेंस है, बुद्धि रूपी लेंस स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन और क्लियर होना चाहिए, और मन रूपी हाथ, मन है हाथ, तो मन रूपी हाथ कैसा होना चाहिए, अचल अडोल और स्थिरियम होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों का योग ज्वालामुखी क्यों नहीं होता है, बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, भटकती बुद्धि, चंचल मन और पुराने स्वभाव संस्कार, भटकती बुद्धि, चंचल मन और पुराने स्वभाव संस्कार। तो हमें क्या करना है, हमें लेंस को भी स्वच्छ बनाना है, क्लीन और क्लियर बुद्धि बनाना है, और मन को मन मना भाव बनाना है, और उसका बुद्धि का मेन स्विच कौन सा है, बुद्धि भटक क्यों रही है, बुद्धि भटकती क्यों है, क्लीन और क्लियर क्यों नहीं होती है, उसका देखो इसने बाबा ने बताया कि मुरली में, अगर हमें ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग अग्नि जागृत करनी है, अगर हमें हमें 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं, तो उसका मंत्र है मन मना भाव, और उसका यंत्र है क्लीन और क्लियर बुद्धि, और उसका मेन स्विच है सच्ची दिल साफ दिल, राइट, मेन स्विच हम समझते हैं ना। तो जब हमको हमको देखना है कि जब हमारा हमें अभी पावरफुल योग, हमें अपने तरह से जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं, कागज पड़ा रहा, बहुत सालों से हम योग कर रहे हैं कि तो विक्रम विनाश नहीं हो रहे हैं, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार नहीं भस्म हो रहे हैं, आज भी हमको गुस्सा आ जाता है, आज भी हमको जल्दीबाजी हो जाती है, आज भी हमको चिंता हो जाती है, आज भी हमको डर लगता है, लगता है क्यों लगता है, मैं आत्मा हूं तो आत्मा को डर लगना ही नहीं चाहिए, लगना चाहिए नहीं, लगना चाहिए, बाबा मेरे साथ है, सर्वसम्मत गीत तो हम गाते हैं, ईश्वर अपने साथ है, फिर डरने की क्या बात है, नहीं, भगवान हमारा साथ ही है, और कौन सा कहते हैं, इन मुश्किलों को कह दो कौन बड़ा है, हा? मेरा खुदा बड़ा है, गीत गाते हैं ना, तो खेत गाते हैं कि खसम शब्द में करते हैं, हा? भाई लोग बताओ रियल में ऐसा है क्या, अभी भूकंप आया जोर से तो क्या करोगे बताओ, जो इस कमरे से भागेंगे वो हाथ उठाओ, जो नहीं भागेंगे वो हाथ उठाओ, बाकी 50% ने हाथ नहीं उठाया, इसके मतलब वो कंफ्यूज है, नहीं मुझे याद है हम ना वहां गए थे ना, अभी पीछे क्या था मुझे ना, त्रिपुरा में है ना, त्रिपुरा में अगरतला, अगरतला में शायद आपको याद होगा, जब अगरतला में हम गए थे तो सेंटर पे ही चीफ मिनिस्टर आए थे, पिछले वाले चीफ मिनिस्टर जो थे, कौन था, मानिक, क्या नाम था उनका, मानिक सरकार, तो वो भी आए हुए थे, उनके और भी साथ में कुछ कैबिनेट मिनिस्टर आए हुए थे, तो स्टेज पे बैठे थे, मैं भी स्टेज पे था, और उसमें भूकंप आया जोर से, याद है आपको, पता डीवाई पाटिल उस समय वहां के गवर्नर थे, गवर्नर साहब डीवाई पाटिल हमारे बहुत अच्छे दिल वाले हैं, वो भी ना दिल वाले समझते हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो कैट फ्रॉम में, तो उन्होंने हमको वहां बुलाया था, अपने राजभवन में बुला के रखा था, हम 5-6 दिन उनके वहीं पर राजभवन में रहे थे, और वहां पर उन्होंने भी प्रोग्राम रखा था, तो फिर सेंटर पे प्रोग्राम ऐसे रखा था, तो वो जो है जब जोर से भूकंप आया ना, तो मानिक सरकार में देखा मजबूत आदमी, मजबूत माना अच्छा आदमी, मतलब ही वाज नाइस पर्सन, तो भूकंप आया तो सारा हिल रहा था, सब कुछ पंखे वंखे सब हिल रहे, पूरी सभा भरी हुई थी पूरे, कि तू उसमें से इतना अच्छा वायुमंडल था, कुछ भी कोई भी हिला नहीं, एक भी व्यक्ति उठ के भागा नहीं, अच्छे जोर से पंखा हिल रहा था। आपको पता सिक्किम में उसमें काफी लोग, काफी उस समय की बात, कई साल पहले की बात, 5-6 साल पहले की बात नहीं, 2012 की बात है, 12 से 11 साल पहले की बात है, तब की बात है, और तब मतलब सचमुच में पर इतना अच्छा वायुमंडल सेंटर पे था, इतना भूकंप आया, वहां भी कुछ डैमेज हुआ था अगरतला में, सिक्किम में तो बहुत डैमेज हुआ था, तो पर कुछ भी, तो ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए, अच्छा रडोल, तो सच्ची दिल साफ दिल जब हमें करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सच्ची दिल साफ दिल माना जिसकी सच्ची दिल माना जिस दिल में बाबा के सिवा दूसरा कोई नहीं है, कोई भी ना देव माना है, ना देवान है, ना देवी मान है, ना देवी मान का कोई संबंध संपर्क नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी रिश्ते में उसका दिल नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा, प्रैक्टिकल खाली कहने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल में ऐसा अभ्यास होना चाहिए, चल हमें काफी अनुभव हो चुका, कोई किसी का है नहीं, है क्या कोई किसी का है, ऊपर ऊपर से कहने के लिए नहीं, रियल में कोई किसी का नहीं है। मुझे याद आता है जब मैंने MBBS पास किया ना, तो इंटर्नशिप हम कर रहे थे ना जब, तो हमारी पोस्टिंग बच्चों के वार्ड में भी होती है, तो बच्चों के वार्ड में पोस्टिंग होती है, तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 1 साल से लेकर के, और 1 साल से बच्चे दूसरे 1 साल के बच्चों का अलग वार्ड होता है, 1 साल से नीचे बच्चों का, पर 1 से लेकर 14 साल तक के बच्चे होते हैं, तो एक नर्स थी बिल्कुल पतली दुबली सी, तो वो नर्स थी जो मतलब वो दूसरी नर्सें होती थी ना, जो 60 बच्चे होते थे हमारे वार्ड में, बहुत लंबा वार्ड था, 60 बच्चे एक वार्ड में, और वो नर्स अकेली, वो जिसको दवाई देनी है 60 बच्चों को, मैं देखता शाम के टाइम वो नर्स जब ड्यूटी पे होते थे, तो नर्स सारे बच्चों को पिला दवाई, बड़े प्यार से पिला के आती थी, और बच्चे सब प्यार से उससे हाथ से दवाई पी लेते थे, और नहीं तो कोई बच्चा रोता नहीं था, और तो मैं देखता था जो नर्स वो ड्यूटी पे होती ना, किसी दिन वो दूसरी नर्स ड्यूटी पे होती थी, तो वो नर्स क्या करती थी, वो बच्चों को पिटाई भी कर देती, नहीं पी नाक पकड़ के वैसे पिलाती थी, तंग करके पिलाते ना छोटे बच्चों को, नाक पकड़ के ऐसे दवाई पिलाएंगे, मुंह में दवाई डालते, पर वो किसी को तंग नहीं, वो मैं देखता भी जाके कैसे वो सबको पिला देती प्यार से, तो आती तो मैं बोलता नर्स आपने तो सबको इतने प्यार से, सब बच्चे इतने खुश होते हैं आपसे, आप कैसे सबको इतना है, मैं अच्छे सीख पाते, पर डॉक्टर साहब मेरी ना मेरी जो बच्ची है ना मेरे घर में उसकी बच्ची थी, कहते मेरी 1.5 साल की बच्ची है, वो दवाई नहीं पीती, मेरे को थप्पड़ मारना पड़ता उसमें, क्या फर्क है बताओ उसमें, 60 बच्चे जो उसके बच्चे नहीं है, सब बच्चों को प्यार से दवाई पिलाती, और सब लोग कहते मेरी आंटी करके उसको बात करेंगे प्यार से, है ना, कि वो मैडम आएगी ना, वो नर्स आएगी ना, तो उसके प्यार से दवाई पिएंगे, दूसरी नर्स आंख दिखाएगी कुछ करती थी, तो वो नर्स इतने प्यार से, और कहते अपने बच्चे को मारती थी, क्यों, क्योंकि मोह था, तो जहां मोह होता ड्यूटी अच्छे से निभा नहीं सकते हैं, कर्तव्य अच्छे से निभा नहीं सकते हैं, क्योंकि संबंधों में भी क्या चाहिए, ये 7 एनर्जी, सत्य की समझ चाहिए, पवित्रता चाहिए, शांति चाहिए, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम चाहिए, अतिंद्रिय सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और 8 शक्तियां चाहिए, तो हमें ये तभी करंट आ सकते हैं हमारे अंदर, जब हम अपने को आत्मा समझ के बाबा की याद में रहें, तब हम अपने संबंधों को अच्छे से निभा सकते हैं, नहीं तो निभा नहीं सकते, नहीं तो उस अटैचमेंट के कारण हम गलत करते हैं, हम चिल्लाते हैं, कलह कलेश होता है, राइट, दोष दर्शन करते हैं, बदलने की भावना रखते हैं। तो सच्ची दिल मना जिस दिल में बाबा एबीसीडी के अलावा कुछ ना हो, और साफ दिल मना जिस दिल में एक श्रीमत के अलावा कुछ और ना हो। श्रीमत मना ये बाबा की मुरली है ना, इस मुरली के अलावा और कुछ ना हो, सारा दिन इस मुरली में ही, यही मुरली बाबा में, इस मुरली में ये मुरली बाबा की श्रीमत है ना, ये मुरली ही बाबा की श्रीमत है। ये मुरली का मतलब एक वाक्य जो महावाक्य है ना, इसमें चार बातें हैं, आज्ञा भी है, शिक्षाएं भी हैं, सावधानियां भी हैं और फरमान भी है। इसमें चार सब्जेक्ट भी हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा भी है। इसमें मनसा के लिए भी होमवर्क है, वाचा के लिए भी होमवर्क है और कर्मणा के लिए भी होमवर्क है। तो ये मुरली जो है ना, ये जिसकी जिसके दिल में ये मुरली बसी हुई ना, और बाबा बसा, मुरलीधर और मुरली, उसकी दिल सच्ची दिल है। तो दिल सच्ची साफ बनाने का तरीका क्या है? सारा दिन इस मुरली का बाबा ने कैसे बताया, मुरली को रिवाइज एंड रियलाइज, ये योग की विधि है, एक्यूरेट विधि है। विजुअलाइज नहीं, आत्मा देखने की चीज नहीं है, देखने की चीज है परमात्मा, देखने की चीज है सूक्ष्म वतन, देखने की चीज है परमधाम, देखने की चीज है महसूस कर सकते हैं। फूल देखने की चीज है गुलाब का फूल, खुशबू देखने की चीज है उसको, गुलाब के फूल की खुशबू का चित्र बना के देखो, बना सकते हो, बना सकते हो। आम देखने की चीज है कि तू आम का जो स्वाद है उसका टेस्ट, उसका चित्र बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो आत्मा एनर्जी है, आत्मा को देख नहीं सकते हैं, कितना भी छोटा बिंदु बनाओ ना उससे भी छोटी है। तो हमें चलते फिरते उठते बैठते इस एनर्जी का इसको महसूस, इसको रिवाइज करो कि बाबा ने आज क्या कहा। अवे बेचारी याद से तुम्हारी अवस्था चढ़ बनेगी, अवे बेचारी मैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही सच्ची दिल है। दूसरा कोई आया तो क्या हो जाएगा, बाबा मेरे दिल में ना एक तो मेरा बेटा रहता है, एक आप भी आ जाओ, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा मेरा बेटा, तीसरा ना कोई, चलेगा चलेगा। शिव बाबा मेरा तो एक, और कौन, शिव बाबा मेरे दिल में एक शिव बाबा, दूसरा मेरा पति, तीसरा ना कोई, ऐसे नहीं चलता है। बाबा को बिल्कुल खाली कमरा चाहिए और साफ सुथरा कमरा चाहिए, उसको कोई जरा भी पसंद नहीं है कोई उसके दिल में आके बैठे। जो ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग अग्नि करने के, जिस दिल में एक बाबा हो, बाबा कहता है दिल में, बुद्धि में और मन में और तन के रोम रोम में जब एक होता है ना, एकाग्रता होती है जो बताए ना किरणें, तो ज्वाला पैदा होती है, तब तो विक्रम विनाश होते हैं। दिल में कुछ और, बुद्धि में कुछ और, मन में कुछ और तन में कुछ और, तो ज्वाला पैदा नहीं होती है, राइट? पर दिल में अगर बाबा आ गया ना, बाकी काम बाबा कर लेता है। प्रॉब्लम सारी दिल की है, इससे चलते फिरते उठते बैठते सारा दिन मुरली को रिवाइज करो। रिवाइज कब होगी? सच्चे दिल के स्नेह से मुरली को रिवाइज। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है वो? समय ऐसा आके पहुंचा है, तुम चाहो ना चाहो बदला तो पड़ेगा ही, घर तो जाना ही पड़ेगा। कौन? अलमाइटी कह रहा है। किसको कह रहा है? मुझ कोटों में से कोई चुनी हुई आत्मा को बोल रहा है, सबको नहीं बोल रहा है, सबको बोल रहा है क्या? बाकी तो बराती बन के आएंगे, है ना, लटकते पटकते नहीं, बस पे पीछे लटक के आते ना, आ जाएंगे। हमें तो कार में बैठ के जाना ना, नहीं साथी बन के जाना, नहीं जाना के बस के पीछे लटक के जाना, काफी सारे हमें पीछे लटक के ही आने वाली हैं, है ना, पीछे डंडे भी पड़ते हैं ना उनको, फिर नहीं सजाएं खाने में, तो सजा नहीं खानी ना, तो इसलिए हमको बहुत बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा। तो हमें अटेंशन करके सच्चे दिल को, और साफ श्रीमत में मन मत, काफी सारे भाई बहन यूं बढ़ के योग लगाते हैं, शिव बाबा ने कब का योग लगाए, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाते योग मुद्र लगा के, बाबा ने श्वासो श्वास याद करना है, तो खाना बनाओ कैसे याद करोगे, ऐसे खाना बनाओगे, गाड़ी ऐसे चलाओगे, खाना ऐसे खाओगे? हमें ये सब आदतें छोड़नी है, क्योंकि हम तो योग का प्रयोग करते हैं ना, हमारे तो पेशेंट आते हैं दिल वाले, नए नए होते हैं, ज्ञान योग भी नहीं उनको होता है। काफी लोगों ने ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं सुना होता है, पर चौथे पांचवें दिन उनको डांस करना होता है, उनकी ब्लॉकेज खुले, तो राजयोग समझ भी आए, योग का प्रयोग भी करें, है ना। तो कैसे करें? उसमें 70-80% लोग तो प्राणायाम कर रहे होते हैं, क्योंकि तो प्राणायाम करने वाले राजयोग कर ही नहीं सकते। आप में से भी कुछ करते होंगे, काफी सारे 50% तो करते ही होंगे, है ना। तो प्राणायाम करने वाला राजयोगी बन नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि यथार्थ विधि नहीं है ना, तो राजयोग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। गंदा लेंस लेके आप किरणें फोकस नहीं होती हैं, हिलते हुए हाथ से कभी किरणें फोकस नहीं होती हैं, है जी, क्योंकि प्राण नहीं चल सकते, क्योंकि आप जब प्राणायाम करें तो आपके अंदर क्रोध बढ़ रहा है, आप हट से सांस को कंट्रोल कर रहे हो, हट से कर रहे हो। प्राण वायु ना, सांस एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसका कनेक्शन शांति से है। जितनी गहरी शांति, जब हम सो रहे होते हैं सांस कैसे हिलता है, पेट अंदर भार होता है, और जब चिंता में गुस्से में होते हैं तो हमारा छाती अंदर भार होती है। तो 24 घंटा हमारा सांस, देवता प्राणायाम करते थे क्या? जो संस्कार यहां डालोगे, भाई सत्युग में जाओगे ना, सत्युग में भी लंबे लंबे सांस लगे, सांस ऊंचे कुछ ऊपर नीचे इसके हो रहे हैं, है ना। हमारे यहां क्या होता है, जब नहीं हमारा, जब वहीं पे रहता हूं मैं, जब हार्ट का प्रोग्राम होता है ना, नीचे वाले कमरे में रहता हूं, ऊपर वाले कमरों में साइड में भी रहते हैं, कोई लोग आदत होती ना भास्त्री का कपाल भाती करने की, वैसे सांस ले रहे हो, तो मेरे को लगता है कि सांस इसका जाने वाला है जल्दी से ना, तो जाकर देखता तो कपाल भाती कर रहा होता, फिर उसको पकड़ते हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हो। क्योंकि जिसके लगन सिर्फ एक में लगन की अग्नि जागृत होनी चाहिए। अगर मुझे ये निश्चय है कि मेरे प्राणायाम से मेरी हार्ट ठीक होगा, तो कभी राजयोग में बुद्धि जाएगी नहीं। बुद्धि सिर्फ एकाग्र होनी चाहिए, एक शिव बाबा मेरी बुद्धि होनी चाहिए, तो ज्वाला जागृत होगी। मतलब एकाग्र नहीं हुई किरणें तो क्या होगा, कागज तो चलेगा नहीं, विक्रम तो विनाश होगा नहीं। तो इसलिए मैंने कहा ये समझ लो, ये क्लास थोड़ा डिफरेंट है ना, जो आप ज्वालामुखी याद की क्लास सुनते हो ना, उससे थोड़ा डिफरेंट है ना। डिफरेंट है कि सेम है, क्योंकि तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना आपको कि सच में ज्वालामुखी याद क्या है। तो अगर हम गलत बाबा की बताई हुई श्रीमत के अलावा जरा भी दिल में मनमत है, मनमत परमत शास्त्र मत गुरु मत है, राइट, किसी ने भी बताई हो जाए तो वो मुझे नहीं करना है। कोई मुझे करे आप लहसुन खा लो आप ठीक हो जाओगे, मुझे मरना मंजूर है किंतु लहसुन खाना मंजूर नहीं है। ठीक है, लहसुन खा के मुझे ठीक होना है तो मुझे नहीं करना है। कोई को मुझे प्राणायाम कर लो ठीक हो जाओगे, मुझे नहीं करना प्राणायाम, मुझे मरना मंजूर है। बाबा करे करे ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, टाइम आ गया तो चले जाना ही है ना, मरने से क्या टरना है, मरे तो हम पहले से हुए हैं, ब्राह्मण माना ही पहले से मरे हुए हैं, मरने का डर है क्या हमको, डर है क्या? ब्राह्मण डरते हैं क्या? ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, ब्राह्मणा बेहद की बुद्धि से मनमना भव मध्य जीव। ब्राह्मण शब्द में तीन अक्षर है, ब्रा माना बेहद, बुद्धि और मन, मां मन और ना मना विष्णु, जिसकी प्रवृत्ति में विष का अणु भी ना हो, ना बुद्धि में ना मन में ना संस्कार में विष का एक अणु, मन मना भाव होके फिर वो विष का एक अणु भी ना रहे। मध्याजी माना क्या, मध्य के संस्कार खत्म, मध्य माना मध्याजी माना मेल फीमेल के भान से परे, फरिश्ता सो देवता, राइट। तो अगर जरा भी हद की बुद्धि है ना, प्राणायाम करने से मेरा ठीक हो जाएगा, ये मेरी इस ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, ये करने आसन लगाने से, सूर्य नमस्कार करने से ठीक हो जाएगा, कई ब्राह्मण सूर्य नमस्कार भी करते हैं, इस सूर्य को नमस्कार करते हैं, अरे भाई तुम उस ऊपर ऊपर वाले सूर्य को नमस्कार करो ना, है जी, ओम का ध्वनि भले करो ना, तो बाबा वो तो अच्छी बात है, ओम की ध्वनि करो, पर वो भी स्थित हो के उसमें अपने आत्मिक, ओम माना क्या, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा ये शरीर के मालिक हूं, ये मेरा शरीर है, इस स्थिति में स्थित करो ना, तो उस अर्थ से ही टिको ना। खाली ओम की ध्वनि करने से फायदा नहीं है, इस अर्थ में टिक के करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी अच्छी बात है, राइट। तो चलते फिरते इस अर्थ में टिक जाओ, सच्ची दिल साफ दिल होगी ना जहां, उसकी बुद्धि क्लीन क्लियर हो जाएगी। बाबा दिल में आ गया ना, इसके पवित्रता अपने आप आ गई, शांति, पास को फुल स्टॉप लगे, वर्तमान में टिक गया, बीइंग इन द प्रेजेंट। लव मीन्स जैसे परमात्मा सबको एक्सेप्ट करता है, सबकी पालना करता है, मैं भी विश्व में हर आत्मा को, चाहे मेरा आतंकवादी क्यों ना हो, चाहे मेरा दुश्मन जो मेरे को रोज मारना चाहता हो, बंदूक लेके आए, आज मैं तुम्हें मारता हूं, आज आ जाओ मार, उसको भी प्यार से पहले कहो पानी पी लो फिर मारना, सुना, तुम बाहर से आए थके हो गए, पानी पी के मारो, नहीं रियली में सच, आपको नहीं पता है शायद ये बातें, प्रैक्टिकल बात शायद आपने सुनी नहीं है। पंजाब में जब आतंकवाद था तो हमारी बहनों ने बताया, अनुभव बताए, जो ना ये जो था ना, जो ना बॉर्डर पे ना, कौन सा एरिया, फिरोजपुर, वहां के सेंटर की बहन ने बताया, आतंकवादी हमारे पास आ गए सेंटर पे, चार आतंकवादी आए दोपहर में 11-12 बजे थे, और वो चारों अपने AK-47 लेके, पंजाबी आती है थोड़ी थोड़ी आपको, वो कहते पैनजी बंद करो, पैनजी, वो मैनजी भी नहीं बोलते, कहते पैनजी, पंजाबी में कहते पैनजी, तुसी बंद करो, एसकी लगा रखा है, ये क्या लगाया वो आपने सेंटर मेंटर, बंद करो, कहते प्राजी तुसी आओ ना बैठो तो सही, धूप में आए हो, पसीना आ रहा है, मैं शिकंजी बना के देती हूं आपको, बाबे दा कड़ा प्रसाद चखो, पंजाबी में बोलते ना, कड़ा प्रसाद नहीं, बाबा का भोग है खाओ, तो धूप तो लगी थी, गर्मी तो हो रही थी बहुत, तो बैठ गए, बैठ के बहन जी शिकंजी बना के लाई, उस दिन बाबा का भोग भी बना हुआ था तो भोग भी ला के दिया, अब बाबा का भोग खा के वो क्या बोलते, वो तो बंदूक लेके आए थे, तो नहीं मानोगे तो बंदूक भी मार देंगे, तो भोग खा के बोलते हैं, वो कहते हैं बहन जी मैं तुहाड़ा परा ऐसे करके ना, मैं तुहाड़ा परा, तुहानू कोई कुछ कवे ना मैनू दसना, सुना, मतलब आपको कोई कुछ कहे ना इस एरिया में तो मेरे को कहना, हम देखेंगे, तुसी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तुसी करो, हम तो अड्डे ताबेदार माना चौकीदार सुना, इसको बोलते प्यार, बाबा का प्यार ऐसा है। हमें डरने की बात है क्या, मरने की बात है क्या, मरे वो को क्या मारेंगे, तो ऐसा प्यार जिसके अंदर तो ज्वाला जागेगी ना, ऐसा बच्चा जो सारे विश्व से NOC मिला ना, इसको NOC समझते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बाबा कहता है स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट और परिवार से संतुष्ट, परिवार माने सबसे, सारे विश्व की हर आत्मा लौकिक अलौकिक संतुष्ट, ऐसी आत्मा को बाप दादा की गोद में जाने का छुट्टी मिलती है, उसको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, उसको क्या होता है, पानाथ सुपालिया की अनुभूति होती है, उसको सर्व प्राप्ति महसूस होती है, ऐसी आत्मा संतुष्ट होती है, और ऐसी आत्मा क्या होती है, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति को प्राप्त करती है, ऐसी आत्मा को आनंद, फिर वो लवलीन स्थिति को महसूस होता है, और जब आनंद का महसूस होता है ना तो तीसरी आंख खुलती है, तब सत्य को परखने शक्ति आती है, विवेक जागृत होता है, थर्ड आई ऑफ विजडम जागृत होती है, तब यथार्थ निर्णय शक्ति, तब दिव्य बुद्धि बनती है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है, उस लिफ्ट में मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में, माना क्या ये लाइट ये शरीर था, मन क्या है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, बुद्धि यहां है, मन सारे शरीर में, और जो ये चार आदत चार संस्कार है ना हमारे, चार मर्यादा चार नियम, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, बाबा और मुरली का संग, ये व्हाट्सएप का संग नहीं, टीवी का संग नहीं, यूट्यूब का संग नहीं, सुना, इसने क्या भेजा, उसने क्या भेजा, उसने इसकी उसने क्या सुनाया, उसने क्या सुनाया, ये नहीं, सत्य संग माने एक बाबा और मुरली, बस तीसरा कुछ भी नहीं, और फिर दैवी गुणों की धारणा, चार हमारी मर्यादाएं हैं, ये संस्कार बन जाए मेरा रोज का हर समय का, और संस्कार पावरफुल अमृत वेला, ये संस्कार बन जाए, कुछ भी हो जाए, धरती दस उधर जाए, भूकंप भी आ जाए तो टूटे मकान पर बैठ के भी योग करो, सुना, अमृत वेला कभी मिस ना हो, मुरली कभी मिस ना हो, सारा दिन अटेंशन, बाबा ने क्या कहा वो अटेंशन रहे, उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन रहे, और
क्या देवी गुणों की धारा और क्या वेंटिलेशन, सोने के पहले पोता मेल बाबा को रोज, बाबा सुबह आपने ये कहा था ये बाबा का लो लेटर है, बाबा एक एक बात को देखो, बाबा ने क्या कहा मैंने क्या किया, बाबा ने क्या कहा मैंने क्या किया, चेक करो और चेंज लेटर लिखो बाबा को। दादियां ये करती थी, बड़ी दादी बताती थी, चंद्रमणि दादी बताती थी, बाबा का चिट्ठी, बाबा की मुंडी रोज पढ़ते थे, शाम को हम लेटर लिखते थे बाबा को, अगले दिन बाबा का लेटर हमारे पास आता था। चार तीन चार दिन का गैप होता ना, मतलब दादी का लेटर रोज जाता था और बाबा का लेटर रोज जाता मुरली के अलावा। तो ऐसा चार, ये हमारी आदत बन जाए, ये संस्कार है सूक्ष्म शरीर का, ये चमकीली ड्रेस बन जाती है। तो सूक्ष्म शरीर बन गया नहीं बन गया, तो सूक्ष्म शरीर या दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट इस सूक्ष्म शरीर के साथ, इस लाइट के मन बुद्धि संस्कार ही सूक्ष्म ड्रेस है, सूक्ष्म शरीर है लाइट का, उस बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है, विस्तार से सार में चले गए, फिर बाबा की गोद में बिन-बिन अनुभव करते हैं, बिन-बिन संबंधों का अनुभव करते हैं, फिर वहां से भी अशरीर बनके मन बुद्धि को सिमट के अशरीर बनके परम धाम घर में शरीर बाप से कंबाइंड होते हैं, तो ये ज्वाला रूप शक्ति आगे अग्नि पैदा होती है। तो बुद्धि दिल बुद्धि है ना, दिव्य बुद्धि हो गई, सत्य को प्रकट शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति। तो जब निर्णय किया तो विस्तार को, मन बुद्धि को विस्तार से हम कहां ले गए, सार, सार माना बाप दादा की गोद, सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करना, बाबा से रूढ़िहान करना, बाबा की मुरली समझ ना आए तो बाबा से रूढ़िहान करके पूछना, तो बाबा से कहीं बात करना, तब हमारी क्या होती है, वहां से फिर वहां से मन बुद्धि को समेट के फिर श्री बन के परम धाम घर में श्री बाप के पर कंबाइंड हो गए, करंट आनी शुरू हो गई। अब ऐसी बैटरी चार्ज होती है, विक्रम विनाश होने लगते हैं और सहन करने की शक्ति आ जाती है, ऐसे केमिकल पैदा होते सहन करने की शक्ति। अब दर्द था, दर्द खत्म हो गया, तकलीफ खत्म हो गई, ऐसे एंडोर्फिन अंदर से ऐसी मॉर्फिन पैदा होती है, अफीम पैदा होती है जो शरीर को हल्का कर देती है, आभामंडल पैदा हो जाता है, कोई गाली दे रहा है मेरे को गाली महसूस ही नहीं होती, क्योंकि उसका वो चैनल था आज तक चैनल पे चल रहा था, मेरा पीस ऑफ माइंड शुरू हो गया है ना, अब वो समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बोले सर मेरी महिमा कर रहा, लगता है गाली दे रहा है पर मेरे को महिमा, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं पागल हूं कैसे गाली दे रहा हूं, वो खुद ही बंद हो जाता है ना, सुनो। तो ऐसा अपने अंदर परिवर्तन आ जाता है, सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आ गई। तो पहला है विवेक, दूसरी है निर्णय शक्ति, और ये छह शक्तियां मेरे के चित्त बनता है, चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड। तो जिसके दिल में सत्य है उसका चित्त क्या है, विवेक जागृत है, निर्णय शक्ति दिव्य है, और चित्त क्या है, शांत एकाग्र आनंदमय हो गया। चित्त के अनुसार चेतन मन में चिंतन चलता है, फिर सारा दिन मुरली का चिंतन चलता है, चलता नहीं तत् चिंतन। जिसके दिल में सत्य है, देवान देवीमान है, उसका विवेक कंफ्यूज हो जाता है, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाती है, उसका चित्त अशांत चंचल बेचैन सार विस्तार में चला जाता है, समेटने शक्ति खत्म, सहन होता नहीं, समाना जाता नहीं, सामना होता नहीं और सहयोग होता नहीं। तो क्या हो गया, अशांत चंचल बेचैन हो गया, तो कौन सी फाइलें खुलेंगी चेतन मन में, दुनिया वाली फाइलें, तमो प्रधान फाइलें, उसने मेरे को ये कहा था आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, दुनिया की सब बातें याद रहती हैं, कि तुम मुरली की बातें, वरदान स्लोगन अव्यक्त इशारा गायब। तो मनमाना भाव तब होता है, और जब मनमाना भाव होता है तो रोम रोम में मन तो सारी जगह फैला हुआ है, जैसे एक ब्रेड होती ना, एक सूखी ब्रेड लो, एक दूध लो एक प्लेट में, ब्रेड वहां डाल दो तो कहां गया दूध, कहां गया, रोम रोम में चला गया ना। ऐसे ही जब मनमाना भाव होते हैं रोम रोम में क्या आ जाता है, बाबा की मुरली आ जाती है। तो मन हमारा अचल अडोल हो गया और रूम रूम में बाबा आ गया, तब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली जगह बनी, तब चारों एक लाइन में आ गए, दिल बुद्धि मन और तन, तब हमारे अंदर ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली हो गई, तब बाबा के साथ ऐसी लवलीन स्थिति हो जाती है, बस बाबा और मैं। और ये नहीं, ये तप है, तपस्या माना तप, हर चीज का तप, फालतू नहीं बोलते है ना, मन का भी मौन, मुख का भी मौन, और बस बाबा के नियम मर्यादा जीवन का स्वरूप बन जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे दादी मम्मा। आज हमारे सामने एक एक एग्जाम्पल है, कौन, रतन में दादी, एक मतलब ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये मुरली ही बाबा की क्या है, निशानी है। तो अभी बाबा तो नहीं है, बाबा तो अव्यक्त है, किंतु इस मुरली से ही बाबा हमारी बुद्धि में आता है, इसी मुरली से ही बाबा हमारे मन में आता है और हमारे रोम रोम में आता है। तो लव लेटर कहां रखते हैं, कहां रखते हैं बताओ, दिल के पास। पढ़ते कब है, कब पढ़ते हैं, जब आसपास देते कोई नहीं है तो फिर क्या करते, छुपा के एक लाइन पढ़ते हैं, सामने से कोई आता तो तुम छुपा लेते हैं, सबके सामने नहीं पढ़ते हैं ना, और मुस्कुराते रहते हैं अंदर अंदर, है ना, बाहर नहीं मुस्कुराते ना, और फिर जैसे मौका लगता है फिर गया फिर पढ़ते हैं। ऐसी लगन मुरली से होनी चाहिए, है ना, ठीक है, राइट। इससे क्या पैदा होगा, ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग में, राइट। ओम, चलिए मैंने पूरा टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा टाइम लिया, पहले तो 15-20 मिनट में लेट आया उसके ऊपर से।
ज्वालामुखी योग तपस्या कैसे करनी है अवश्य ही आप सभी को समझ में आया होगा। तो भ्राता जी समय निकाल कर हमारे बीच में आए, आपको लाभान्वित किया, भ्राता जी का पुनः एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।